गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे धाम। इस समय सार परमागम है। आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। जैन अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और इसमें उस भगवान आत्मा का वर्णन किया गया है कि जिस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा के जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिस आत्मा के ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भगवान बनने का उपाय है। अपन को 84, 85 और 86वीं गाथा पर चर्चा करनी है। बहुत भाई बिल्कुल नए नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं और पूछने पर पता चला है कि बहुत लोग नए आए हैं और आने वाले हैं। शिविर में तो आएंगे ही, अभी भी बहुत कच्ची भाई आए हैं। उन सब की समझ में सरलता से समय सार में क्या कहा है ये आब है, उस दृष्टि से मैं ये बात करूंगा। इसलिए बहुत ज्यादा तत्व के अभ्यासी जो लोग हैं ना, तो ज्यादा आकुलता नहीं करें। जैन दर्शन का ये सार है कि देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, यह बस जिनवाणी का इतनी बात है, सार में इतनी बात है और बाकी जो कुछ कहा है बस इसी का विस्तार है। देह माने अकेला शरीर नहीं, देह माने यहां पर वो सब चीजें जो अपना आत्मा में शामिल नहीं होती। और आत्मा भी कौन कि जिसका ध्यान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसका श्रद्धान करने से, श्रद्धान माने ये मैं हूं ऐसा अपनापन स्थापित करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और यही मैं हूं ऐसा मानने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस आत्मा की बात है। आत्मा तो बहुत प्रकार के हैं इस जगत में, एक कीड़े मकोड़े भी तो आत्मा ही है ना, अपन बोलते हैं सब जीव हैं। और जनवाणी में इनका भी वर्णन है ना, 2 इंद्री जीव, 3 इंद्री जीव, 4 इंद्री जीव, ये जीव हैं, ये बात सच्ची है, लेकिन इनका ध्यान करने से केवल ज्ञान नहीं होगा। ये जीव हैं जिनागम में इसलिए बताया है, इस सत्य का उद्घाटन इसलिए किया है कि तुम इनके साथ जीवों जैसा व्यवहार करो, इन्हें जड़ मत समझ के व्यवहार मत करना। जैसे तुम इस रूमाल को जड़ समझ के तोड़ देते हो, फाड़ देते हो कागज को, ऐसे ही इन्हें समझ के इनके साथ व्यवहार नहीं करना। इसके लिए उन्हें जीव कहा है कि हमारे हृदय में उसका दया का परिणाम रहे, क्रूरता के परिणाम नहीं रहे। इनकी हिंसा से बचने के लिए इन्हें जीव कहा गया है। और गुरुदेव श्री की बात तो आपको ख्याल में ही है कि एक दफे की सच्ची घटना है। हेमचंद जी, गुरुदेव श्री अपने जहां ठहरते थे ना, वहां से भोजनालय में भोजन करने जा रहे थे और हम 5-6 लोग उनके साथ थे। वहां पर बरसात के दिनों में घास उगाती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पर कैसे पत्थर रख दिए जाते हैं कि घास पे पैर नहीं पड़े, उन पत्थरों पे पैर पड़ पड़ के जाए। तो एक दूसरे के बगल में नहीं चल सकता, अकेले चलना पड़ता है। और गुरुदेव का साथ में चलना हो तो हरेक की ये भावना रहती है कि मैं उनके बगल में चलूं, और सामने यदि फोटोग्राफर हो तो फिर तो कहना ही क्या है। तो सब लोग उनके बगल में आकर घास में चलने लगे, तो गुरुदेव वहीं खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मालूम है तुम घास पर चल रहे हो, हटो इस पर से, हटो। इसमें अनंत भगवान आत्मा विराजमान है, ये साधारण वनस्पति है, ये नीम के फूल पड़े हैं ना उनमें एक एक में, और अपने पिछले भवों के कई माँ बाप भी इनमें हो सकते हैं। क्यों इन पे पैर नहीं रखना? तो वहां किसी आदमी ने कह दिया, कोने देखा, किसने कहा होगा ये बोलो मधुकर भाई, मैं बता सकता हूं किसने कहा होगा? क्या कहा? कोने देखा, माने किसी गुजराती ने कहा होगा, हिंदी ने। तो एकदम आंचड़ा के उन्हें गुस्सा आ गया। इसमें गुस्सा आने की क्या बात है, इसमें हमें और आपको तो हंसी आई। क्यों उन्हें गुस्सा आया? किस बात पे गुस्सा आया बाबू भाई? उनने कहा कि तुम ये भगवान पर अश्रद्धा कर रहे हो, मैंने थोड़े देखे हैं, ये तो अनंत भगवान ने देखे हैं कि इसमें अनंत नवोदिया जीव होते हैं, आलू में अनंत नवोदिया जीव होते हैं, ये हमने और आपने नहीं देखे, ये भगवान ने देखे हैं। ऐसा कहकर तुम भगवान पर अविश्वास प्रकट कर रहे हो, तुम भगवान को गाली देख रहे हो, तुम सर्वज्ञता में शंका प्रकट कर रहे हो। क्यों? उनने कहा कि इसमें अनंत भगवान आत्मा विराजमान है, तो फिर हम यह करें कि उनकी अस्तित्व से पूजन करने लग जाएं? ते आलू देवा। क्या क्या? अरे भाई, उनकी पूजा करने के लिए उन्हें भगवान आत्मा नहीं कहा, काय के लिए कहा? कि तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि जो एक इंसान के साथ भगवान के साथ किया जा सकता है। क्यों? मैं यही कहता हूं लोगों से कि पूज्य गुरुदेव श्री यहां विराजमान होते तो आपकी हिम्मत थी कि उनके गले में जाके माला डाल सकते थे, ठीक बोलो, कि उन्हें माथे पर तिलक लगा सकते थे। लगाया किसी ने कभी? वो तो बताओ, यहां भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके सामने मौजूद थे? नहीं। तो जो व्यवहार उनके साथ नहीं कर सकते थे वो उनकी फोटो के साथ भी नहीं कर सकते हो, क्यों? तब तो उनने आवे माना कि हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव माना तब फोटो आपने यहां लगाई है। बनारसी दास ने लिखा ना, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिना गम माही, और रंच मात्र दूषण लगे तो वह जिन प्रतिमा नाई। बहुत गंभीर अर्थ है इसका। जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति जिनेन्द्र भगवान के समान है, जिन प्रतिमा जिन सारखी, है ना, सारखी माने समान। क्या कहना चाहते हैं आप ऐसा कहके? कहां ये पत्थर की मूर्ति और कहां वे साक्षात केवल ज्ञानंद अनंत ज्ञान के धनी परमात्मा? ये सर सारखी कहकर के तुम कहना क्या चाहते हो? कि हम दो बातें कहना चाहते हैं कि एक तो भगवान अनंत भगवान समूषण में जैसे विराजमान थे उनकी प्रतिमा वैसी होनी चाहिए दिनेश भाई, जिन सारखी का मतलब, तब तो जिन सारखी कहलाएगी। मेरे पिताजी पगड़ी बांधा करते थे, झग्गा पैसे पहनते थे, अब उनका फोटो सूटेड बूटेड लगा करके टाई माई बांध करके और टोप लगा करके बना दो तो कोई मानेगा? बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, पूज गुरुदेव श्री का भी ऐसा टाई माई लगा कर तो बना कर बढ़िया फोटो चेहरा वही लगा दो और यहाँ लगा दो, लगाएंगे मुकुंद भाई? जैसे बुद्ध थे वैसी होनी चाहिए ना ऐसा जी। एक अर्थ तो यह है, जिन प्रतिमा जिन सारिखी कही जिनागम माई, बस हमें और कुछ नहीं कहना है, बस समझ लो वहां समोह समय में भगवान जैसे विराजमान थे बस वैसे होना चाहिए। कि तुमने इतना ठाट बाट क्यों लगा रखे सिंहासन और छत्र कमल भामंडल, हम क्या करें? समोह समय में वो थे ना, छत्र कमल भामंडल थे, लेकिन उनसे तो बहुत दूर थे, वो उनको टच भी नहीं कर रहे थे, वो सिंहासन से भी चार हाथ ऊपर अंतरिक्ष विराजमान थे। जो आज हम अंतरिक्ष की कल्पना करते हैं ना, और जमीन पर तरकीब से टका चकू के और झूठा अंतरिक्ष बनाते हैं, क्यों? वो समोसन में साक्षात अंतरिक्ष थे, है ना? जिन प्रतिमा जिन सारखी का एक तो अर्थ है, और दूसरा ये अर्थ ये है कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए कि जैसे समोसन में तुम जाते तो अनंत भगवान के साथ करते, ऐसा ही व्यवहार उन प्रतिमाओं के साथ होना चाहिए। ये दूसरा अर्थ है। गुरुदेव के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, हमारे तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, पिताजी के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए ना, सबके साथ जैसे थे वैसा होना चाहिए ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपना व्यवहार सुधारो, इनको तुम साधारण समझकर, ये तो साधारण वनस्पति है, क्यों? उनके साथ साधारण जैसा भगवान व्यवहार मत करो, तुम्हारे माँ बाप कई भवों के बैठे हो सकते हैं, तो उनके ऊपर तुम ऐसा पैर रख देते क्या? इसलिए पैर मत रखो, ये गुरुदेव का कहना था। तो ये वो व्यवहार सुधारने के लिए उन्हें जीव कहा है, ध्यान करने के लिए जीव नहीं कहा। तो ध्यान करने वाला जो जीव है वो तो समय सार में जिसे जीव कहा है, आत्मा कहा है, वो है। और वो जब तक नहीं जाना, हम तो बहुत ध्यान किया लेकिन वो आत्मा फात्मा हमें ध्यान में दिखा ही नहीं, तुम्हें पहले ज्ञान में ही नहीं आया तो ध्यान में कैसे आएगा? पहले उस आत्मा को तुमने समझा ही नहीं है तो आत्मा 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 तो सब कहते हैं, और शास्त्रों में भी कई प्रकार के आत्माओं का वर्णन है, हम क्या करें? बहिरात्मा भी आत्मा है, अंतरात्मा भी आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, और तीनों से रहित भी आत्मा है, है? ना जो बहिरात्मा है, ना जो अंतरात्मा है, और ना जो परमात्मा है, ऐसे आत्मा की बात है। इसलिए भैया वो आत्मा आत्मा अलग है, समय सार वाला आत्मा अलग है। मेरे से एक भाई बोले, पंडित जी आपकी निगाह में क्या लड़का होगा? मैंने कहा हाँ बोलो, काय के लिए चाहिए? कि तुम पंडित लोगों की ऐसी खराब आदत हो गई है कि तुमसे एक बात अब पूछें तो तुम तीन प्रश्न हमसे कर देते हो, जवाब तो नहीं देते हो, हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हो। हम पूछ रहे कोई लड़का आपकी निगाह में है तो हाँ कह दो कि ना कह दो, अब क्या काय के लिए चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों? हजार प्रश्न क्यों करते हो? क्योंकि उसके बिना हम आपको बता नहीं सकते लड़का, कि लड़का बताओ ना आप, कोई लड़का है आपकी निगाह में कि नहीं, कि लड़कों की क्या कमी है? इस हिंदुस्तान में 1 अरब आदमी रहते हैं ना, तो कम से कम 20 करोड़ लड़के होंगे, बोलो क्या कहना है? लड़कों की कमी क्या है? लड़के तो बहुत हैं, लेकिन जब तक तुम बताओगे नहीं कि किस काम के लिए चाहिए, हम तुम्हें लड़का बता सकते नहीं। क्यों? हमारी जिद नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। तुम्हें लड़का यदि अपनी लड़की के लिए योग्य वर के लिए चाहिए हो तो हम वैसा लड़का बताएं, क्यों? और लड़का यदि तुम्हें गोद लेने के लिए चाहिए हो तो हम वैसा लड़का बताएं, और तुम्हें घर में चौका बर्तन करने के लिए चाहिए। लड़का तो बहुत प्रकार के है, क्यों बोलो? ہمارا ایک مفت کا کوشچن ہے کہ پرابلم ہے ہماری کہ ہم کیسے بتائیں تمہیں لڑکا, تمہیں جس کام کے لیے چاہیے ہو وہ بات بتاؤ تو ہم تمہیں لڑکا بتائیں گے. ایسے ہی کہ ہمیں آتما سمجھاؤ کہ تمہیں کس کام کے لیے چاہیے آتما, یہ جیو دیا کے لیے چاہیے ہو تو چنتی چنتے کیڑے مکوڑے سب آتما ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بھی آتما ہے کہ نہیں؟ ایک اندری جیو, دو اندری جیو, تین اندری جیو, چار اندری جیو, پانچ اندری جیو, اسنی پانچ اندری جیو, یہ بھی سب جیو ہیں کہ نہیں؟ نارکی جیو, منوش جیو, ترنت جیو, دیو جیو, یہ بتائیں. اور تمہیں دھیان کرنے کے لیے چاہیے ہو تو پھر وہ سمے سار والا آتما بتائیں کہ نہ جو دیو ہے, نہ جو راگ روپ ہے, نہ جو پریائے روپ ہے, نہ جو گن بھید روپ ہے. کیوں؟ دیہ دیول میں رہے پر دیہ سے جو بھن ہے, وہ آتما دیہ روپی مندر میں رہتا ہے پر دیہ نہیں ہے. ہے راگ جس میں کنتو جو اس راگ سے بھی ان ہے, راگ تو ہے اس میں پھر وہ آتما جدا ہے, وہ راگ جدا ہے. کیوں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو گاتھا آپ نے شروع کی, آپ کے پاس کچھ کتابیں آ گئی ہیں, 69-70 گاتھا نکالو, وہ پدا نواد نکالو. ہاں پیج نمبر بتاؤں میں 55, ایک کتاب جو ہے نا اس کتاب میں 55 پیج مل گیا. بس یہیں سے بات شروع کی ہے. آتما ار آسروں میں بھید جب جانے نہیں ہے آگ تب تک جیو سب کرودھ آدی میں برتن کریں. کسن ہے اس میں, اس کا ارتھ سمجھنے کے لیے کسی پنڈت کی ضرورت ہے؟ کتنا صاف ہے. میں نے کہا تھا آپ سوچتے تو آپ کو معلوم پڑ جاتا کہ آتما جب تک آتما اور آسرموں میں بھید نہیں جانے گا تب تک اجانی رہے گا اور کرودھ آدک بھاو کرتا رہے گا. کتنا سرل ارتھ ہے بولو. کہ ہم تو بھیا اجانی ہیں, ہم تو اجانی ہیں, ہم اجانی کیسے مٹیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آتما اور آسرو یہ جدے جدے ہیں, اور یہ بات تم جب تک نہیں جانو گے سب تک اجانی رہو گے. شاستری نیا چیز کر لیں پھر بھی کہ ہاں, ایم اے پی ایچ ڈی کر لیں پھر بھی کہ ہاں, انجینئر ڈاکٹر ہو جائیں پھر بھی کہ ہاں, یہ سمے سار والے اجانی تو یہ جن ہیں. یہ کون سا ادھیکار ہے بھیا؟ کرتا ہے. اب اس کے پہلے جو ادھیکار نکل گیا جیو عجیب, اس میں لکھا تھا تم جیو اور عجیب کو جب تک جدا جدا نہیں جانو گے تب تک اجانی رہو گے, لکھا تھا نا. کہاں لکھا تھا؟ کم مینو کم ممی احمد کہ کم چ کم مینو کم مم جائے سا کھلو بدھی اپڑی بدو ہودی تاوے. 19 کا تھا کہ جب تک یہ آتما کرم میں ہو نو کرم میں, نو کرم مانے شریر, ان میں یہ میں ہوں یہ میرے ہیں ایسا مانتا رہے گا تب تک اجانی رہے گا. یہاں کہہ رہے آشرموں میں راگادی سے بھید بھاو نہیں جانے گا تب تک اجانی رہے گا. وہ کہتے یہ شرط پوری کرنی پڑے گی کہ دے اس دے استری پتر مکان جائیداد شریر آتما میں اتپن ہونے والے موہ راگ دیش کے بھاو اور بھی پرنمن ان سب سے آتما بھن ہے, جب تک یہ نہیں جانو گے تب تک اجانی رہو گے. یہ پہلی گاتھا میں کرتا کرم ادھیکار میں یہ بات کی کہ اجانی کب ہو جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے ماننے لگ جائیں گے اور پھر تم کہہ دو گے ایک شرط اور رکھ دو, پھر ایک شرط اور رکھ دو, پھر ایک شرط اور رکھ دو. کیوں؟ ابھی تم نے یہ پورا نہیں کیا, یہ پورا نہیں کیا, तो अगली गाथा में कह दिया ज्ञानी कब हो जाओगे, पढ़ो। क्रोधादि में बरतन कर आत्मा अर आश्रवों में भेद जाने जीव जब इन देव ने ऐसा कहा कि बंदी हो वे बंद। तुम ज्ञानी हो जाओगे और तुम्हें कर्म का बंद नहीं होगा। हम सबकी एक ही समस्या है कि हमें कर्म बंद नहीं हो। हमने सुन रखा है कि एक दफे कर्म बन गए तो भोगे बिना छूटते नहीं है। बहुत बहुत तकलीफ का काम है। सब लोग ये मानते हैं कि सारी जो तकलीफें हैं वो कर्म की वजह से हैं। तो वो कहते हैं जब तक तुम आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानोगे तब तक अज्ञानी रहोगे, क्योंकि तब तक तुम कर्ता कर्म भाव में फंसे रहोगे और इनके कर्ता बनने रहोगे, तब तक तुम्हें बंद होता रहेगा। और जब तुम ये जान लोगे कि ये जुदे हैं, मैं जुदा हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, तो तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा। ये तीन गाथाओं में सिर्फ इतनी सी बात कही है। अब इन्हीं गाथाओं पर व्याख्यान करना होता तो तीन दिन भी निकल सकते हैं। लेकिन इतना समझ लो तो काम हो गया तीन गाथाओं में। क्या कि यदि कर्म बंधन नहीं करना है और ज्ञानी बनना है तो आत्मा और आश्रमों में भेद जान लो। और भेद जानने का मतलब ये है ये जुदे हैं, मैं जुदा हूं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं। कि तुम ये तो बताओगे भाई आश्रम क्या है, तो अत्यंत संक्षेप में भैया भी आश्रम दो प्रकार के होते हैं। आश्रम माने तो होता है आना, आना आश्रम माने होता है आना। तो कर्मों का आत्मा के साथ आकर कर्मों का आत्मा में आना वो आश्रम है, और उसके साथ चिपट जाना वो बंध है। इन्हें शास्त्रीय भाषा में द्रव्य आश्रम और द्रव्य बंध कहते हैं। अब बेराग आते क्यों हैं और बंधते क्यों हैं, तो कहते हैं कि आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, इसलिए वो कर्म आते हैं और आत्मा से बनते हैं। इसलिए मोह राग द्वेष के परिणाम ही भाव आश्रव और भाव बंध हैं। देखो यहाँ तो फर्क था, आना और बंधना दो चीज थी, और वहां एक ही हो गए, क्योंकि उन्हीं से आते हैं और उन्हीं से बनते हैं। कारण नहीं बदला ना, क्यों? कर्म आए तो मोह राग द्वेष से और बंधे काय से, मोह राग द्वेष से, तो एक ही चीज हो गई ना। वास्तव में भाव आश्रव और भाव बंध में भेद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पंडित लोग एक तरकीब लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि जिन भावों से कर्म आवे बेभाव भावाश्रव, और जिन भावों से कर्म बने बे भाव बने। हो गया ना, अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन कौन जिन माने जिनको खोलो ना, तो जिनको खोलो तो जिन राग देश मुए भावों से कर्म आए बे भावाश्रव, और जिन मुए राग देश भावों से कर्म बने, तो दोनों में मोह राग द्वेष भाव ही तो बोला, तो वे कहां बदले? एक ही है ना। ये तो आश्रम की तरफ से दो भेद हो गए। तुम्हारे मामा और इनके पिताजी वो व्यक्ति दो थोड़ी हैं, वो तो तुम्हारी तरफ से दो हो गए। क्यों? कर्मों के आने में भी वो निमित्त हैं और कर्मों में बंधने में भी वो ही निमित्त है। तो निमित्त की अपेक्षा देखेंगे तो दो हो गए, और उपादान की अपेक्षा देखेंगे तो वे दो हैं ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये जो भाव इन दोनों आश्रय भावों से आत्मा को हमें जुदा जानना है। अब यहां से उन्होंने सारी रामायण शुरू करी, तो उन्होंने कहा जुदा जानकर क्या करेंगे, क्या आश्रमों को छोड़ देंगे और आत्मा को पकड़ लेंगे, जुदा करना काय के लिए, बोलो ऐसा समझ लो कि अपनी किसी माँ बहन को एक भूत चेंट गया, उदाहरण के लिए चेंटते फिरते होंगे, नहीं मैं उस झगड़े में नहीं पड़ता, समझ उदाहरण के लिए समझ लेना, क्यों अब वो हमारी माँ और वो भूत एक में खो रहे हैं, तो हम भूत भगाने के वाले के पास गए, क्यों अब उसने अपने जंतर मंतर से भूत को अलग कर दिया और आत्मा को माँ को अलग कर दिया, समझिए ना, तो क्या करना, भूत को घर ले जाना, अम्मा को आश्रम में भेज देना, क्यों क्या करना, बोलो भाई, अम्मा को घर लाना और भूत को जहां जाना हो जाए, हमें क्या लेना देना, समझ गया, तो आश्रम और आत्मा को अलग अलग जान लिया तो आश्रमों को छोड़ देना और आत्मा को पकड़ लेना, क्यों छोड़े हम, तब दोनों ही अपनी चीज थी तो हम नहीं छोड़ेंगे कि भैया वे असुचि हैं, अपवित्र हैं, दुख रूप हैं, दुख देने वाले हैं, ये आप उन्होंने कौन सी गाथा में कहा, 72वीं गाथा में, साधु आसवाणम असुचितम च विवरीद भावंत, है ना, आश्रम भावों को ये अपवित्र हैं और ये विपरीत हैं, किसके विपरीत हैं, कि तेरे आत्मा के विपरीत हैं, बंधस्य कारणंतिये ततो नियतम, दुखस्य कारणंतिये ततो नियतम कुणदी जीवो, दुख रूप है, दुख के कारण है, इसलिए उनसे जीव निवृत्ति कर लेता है, भूत को घर लाता है कि अम्मा को, अरे भूत ने तो इतने दुख दे हैं, अब उसे घर लाके क्या करें, कि ऐसा है कि कोई ऐसी विधि है कि हाँ विधि है, क्या करें, वो भूत को भगाने की कोई विधि है, कौन सा भूत, वो आश्रम वाला, तो उसमें बंद भी शामिल है, क्योंकि भाव बंद और भाव आश्रम तो एक ही है ना, उस भूत को भगाने की कोई विधि है, कौन घर से मेहमान को भगाना हो तो उसकी कोई विधि है, अरियल मेहमान होते हैं ना कई, आगे जम जाते हैं, अब भागते ही नहीं है, क्यों, तो एक दिन पति पत्नी ने नकली झगड़ा किया क्या, और नकली झगड़ा करके पत्नी बोली कि जाओ मुझे खाना नहीं बनाना है, वो रूठ के बैठ गई, तो मेहमान ने देखा कि अब तो खाना यहाँ बनेगा ही नहीं, अब तो चलो, तो अपना सामान बांध करके जाने लगा, वो जाने लगा ना, तो वो पति बोला अब क्यों रोती है, वो तो गया मैंने तुझे मारा है, वो असली थोड़ी मारा है, वो तो उसे भगाने के लिए मारा था, क्या चाहता, तो वो बोली मैं असली थोड़ी रो रही हूं मैं भी उसे भगाने के लिए ही रो रही थी, तो वो मेहमान लौट के आ गया, बोला मैं असली ना थोड़ी रहा क्यों, कि भाई मेहमान घर में ना आए और आ गए हों तो भग जाए, तो उनका उपाय क्या है, बस बिल्कुल उदास, उनकी तरफ देखो ही मत, उनसे बातें ही मत करो, उनको आओ आओ बैठो चाय पानी दे, सेवा करोगे तो क्यों नहीं आएंगे और क्यों नहीं रहेंगे, उनसे एकदम उदासी तो वे गारंटी से चले जाएंगे, ऐसे ही इन आश्रमों को भगाना है तो 73वीं गाथा क्या है कि तुम तो अपनी ही बात करो, इनकी बात सोचो ही मत, ये सोचो मैं ये कहूँ मैं शोध निर्म ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, और ए माँ इसमें ही स्थित हो जाओ, स्थित लीन इसमें ही, بس آنکھیں بند کر کے تم اس میں لین ہو جاؤ, سب مہمان بھاگ جائیں گے. آسروں کو چھ کرو, سب آسر بھاؤں کا چھ ہو جائے گا. دیکھو میں بہت تیز رفتار سے جو گاتھا اپن کو چلانی ہے اس کی طرف جا رہا ہوں. کیوں سمے سار کا جنہیں تھوڑا ابھیاس ہے سب خیال میں آتا ہی ہوگا نا. کہاں کہاں تک آ گئے اپن؟ 73 گاتھا تک, 74 بھی ہو ہی گئی, خیال میں آئی نا. تو اس طرح ان آشرموں سے کرموں سے مکت ہونے کا, کرم بندھن سے چھوٹنے کا اپائے کیا ہے یہ بتایا. کہ کہاں سے شروع کیا؟ کہ آشرموں اور اپنے میں بھید جانو, پھر آشرموں کو اپوتر مانو, وپریت بھاو مالے مانو, دکھ کے کارن مانو, تو پھر ان سے تم چھوڑ دو گے. پھر یہ نہ بھگے تو کہ اپنے میں جم جاؤ, بھگ جائیں گے, ان کی طرف چنتا مت کرو. بار بار آنکھ کھول کے دیکھو مت کہ جی بھگے کے نہیں بھگے, بھگے کے نہیں بھگے. کیا تم بھروسہ کرو, تم ان کی طرف سے پوری اپیکشا کرو, ایک گارنٹی سے بھگ جائیں گے. بار بار اس کی طرف آنکھ کھول کے نہیں دیکھو. تو وہ کہتا ہے کہ ہم پھر گیانی ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہوگی بیٹا؟ آشرم بھگ جائیں گے, کرم بندھن سے چھوٹ جائیں گے تو تم گیانی نہیں ہوگے. کیسے مانے کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم گیانی ہو گئے؟ کیوں کہ چل جائے گا کہ کیسے جانے؟ پہچان کا چن بتا دو. تو کمس پرنامم نو کمس تہیو پرینامم نہ کرے دیے بے مادا جو جان دسو حبدی نانی. کون سی گاتھا؟ 75ویں گاتھا. 75 تک آ گئے نا, کہاں سے 69 سے 7 گاتھا ہو گئی. کتنا منٹ ہوئے بھیا؟ ایک گاتھا میں 15 دن بھی چل سکتی ہے اور ایک دن میں 50 گاتھا بھی ہو سکتی ہے, اور چھوٹے کا کچھ نہیں. کیوں؟ کرم کے پرنام کو اور نو کرم کے پرنام کو. کرم کے پرنام مانے کیا؟ کہ کرم کے ادے میں جو جو ملا ہے وہ سب کرم کے پرنام. اور نو کرم کے پرنام مانے کیا؟ سارے سنیوگ, استری پتر مکان جائیداد روپیہ پیسہ نگر دیش گاؤں اور شریر, بس ان کے تم گیاتا دشتا بن جاؤ, کرتا مت بنو. کمس پرنامم نو کمس تہیو پرنامم نہ کرے دی جو جان دی سو حبدی رانی. اے راجکوٹ والے بھائی, تو راجکوٹ کی بات کر رہا ہوں, ذرا دھیان سے سنو. کیا لکھا ہے؟ کن کو, کن کو بول دو پھر دھیان سے سننا. کمس پرنامم نو کمس پرنامم نہ کرے دی تو جو جانے دی. یہ کرم کے پرنام کو اور نو کرم کے پرنام کو جو کرتا نہیں ہے ماتر جانتا ہے. کنہیں؟ انہیں. سمجھ میں آ کے نہیں ہے؟ آتما کو نہیں لکھایا. سانجھے سننا, کیا ہندو نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ راجگوڑ والے بولتے ہی نہیں تو کیا کریں. آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جو جانے دی, جو انہیں جانتا ہے, کن کو؟ کرم کے پرنام کو اور نو کرم کے پرنام کو. کرتا تو نہیں ہے ماتر جانتا ہے. حبدی سوڑانی وہ گیانی ہوتا ہے. کرم کو جاننے والا گیانی ہوتا ہے, پر کو جاننے والا گیانی ہوتا ہے. آیا سمجھ میں کچھ؟ پتہ ترمی گاتھا میں گیانی کی پرواسہ لکھی, کیسے پہچانے جانی کو؟ تو یہ لکھا میں کیا کروں؟ پڑھو بھائی ہندی میں پڑھو, میں تو پراکرت میں بولی نا. 75ویں کا تھا. کلیئر ہے کہ نہیں؟ شنکا ہے کہ تھوڑی بہت؟ अब इसके आगे चार गाथाएं और पढ़ो, उनमें भी यही यही बात लिखी है। पढ़ पढ़ो पर द्रव्यती क्या देखा, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करें। बहु भाई वे ज्ञानी हैं और पुद्गल कर्म को जाना करें, ऐसा नहीं कि एक दफे जान लिया तो आ गया था। पढ़ो आगे बढ़ो। हाँ हाँ क्या करें, ज्ञानी पुरुष जाना करें पुद्गल कर्म के अनंत फल को। क्या है पुद्गल कर्म का अनंत फल? ये जो अघातीय कर्मों का उदय का फल है सारे संयोग, स्त्री पुत्र मकान राजा रुपया पैसा नगर देश गांव है कि नहीं। और अघातिया कर्मों के उदय का फल क्या है? मोह राग देश के परिणाम। इनको ज्ञानी पुरुष जाना करें और ये जाना करें और पुद्गल नहीं जाना करें। अगली गाथा पुद्गल की चलो। ये क्या कह रहे हैं कि भई वो जानता हुआ परिणमता है, ये कहा था ना जीव, तो ऐसा लगा कि जो जानता हुआ होगा वो ही परिणमेगा। परिणमन करने के लिए जानना बहुत जरूरी है और ज्ञानी जानता हुआ है इसलिए वो परिणमेगा। अज्ञानी कैसे परिणमेगा, वो पुद्गल कैसे परिणमेगा? क्यों कि तुम तो ज्ञान रूप परिणमित हो गए कोमल सिंह जी, क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो, हम तो अज्ञानी, हम कैसे परिणमित होंगे? और इसका काम कौन करेगा, ये रूमाल को कौन परिणमाएगा? तो कहते भैया जानने वाले ज्ञानी भी परिणमित होते हैं, नहीं जानने वाले अज्ञानी भी परिणमित होते हैं, और जिनमें ज्ञान गुण है ही नहीं ऐसा पुद्गल द्रव्य भी परिणमित होता रहता है। इसलिए करने के लिए जानना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। ये कहां कही, कौन सी गाथा में? बुन्यासी, बुन्यासी आ गई ना। कहां तक आ गए अपन, कहां से? नवासी से गुन्यासी, गुनहत्तर से गुन्यासी, ग्यारह गाथा। ग्यारह गाथाओं में क्या कहा कल पूछूंगा, ये तुमसे पूछूंगा सर, समझे ना? ये मैं समझना कि हम पंडित हो गए, पूछूंगा मैं तुमसे क्या? देखो कहा समय सार कठिन है, मैं आपसे पूछता हूँ ये ग्यारह गाथाओं में इसके अलावा क्या कहा है कोई माई का लाल मुझे बताए, और मैं ग्यारह गाथाओं का भी आपको याद करा देता हूँ, और बिल्कुल नया से नया जो पहली दफे आया होगा उसे भी याद हो जाएगा। क्या है, क्या कहा ग्यारह गाथाओं में? कि जब तक यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के भेद को नहीं जानेगा तब तक इसके अंदर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी तो कर्म का बंध होगा। जब यह आत्मा आत्मा और आश्रमों का भेद जान लेगा तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाएगी और उसके कर्मों का बंध होना मिट जाएगा। इसलिए इन आश्रम भावों को अपवित्र विपरीत भाव वाला जानकर ज्ञानी जन इन्हें छोड़ देते हैं और उसकी एकमात्र विधि अपने आत्मा को जानना है। और अपने आत्मा को जानते रहो ये कर्म अपने आप तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम तो क्या करो कि हम इनका क्या करें, कि इनका कुछ करो मत, सिर्फ जाना करो। चार गाथाएं इसमें बस खत्म। क्यों? इनका तुम कुछ करो मत, इन्हें जाना करो, कि जानने का काम तो करें इनका, इनको क्या इनको करो, लेकिन ये काम इनका नहीं है, ये काम तुम्हारा है। क्या इनको जानना तुम्हारा काम है कि हमारा नहीं है तो इन्हें जानेगा कौन, बताओ? ये तो बिना ही जाने रह जाएंगे, क्योंकि ये तो स्वयं को जानते ही नहीं है, ये तो स्वयं को जान ही नहीं सकते हैं, तो बाकी के क्षेत्र में तो बिना ही जाने रह जाते हैं ना। क्यों? कि जाना करें, एक दफे जान ले वो तो हमने बर्दाश्त कर लेते, अब तो कहते जाना करो, कि भैया मोक्ष में रहोगे तो अनंत काल तक जानना ही जानना करना पड़ेगा, और यदि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी हाँ तो वह बहुत तकलीफ हो जाएगी, पैरों में दर्द होगा क्यों? अरे भाई, स्वपर प्रकाशक भगवान आत्मा का स्वभाव है, और वो तो सहज भाव से जानने में आता रहेगा, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है। ये इतनी बात ग्यारह गाथाओं का सार है। किसकी समझ? जानने में आ जाए तो जाना करो, क्या दिक्कत है? कोई बोझा नहीं है, पर को जानना अपने जानने को विरोधी नहीं है, वो तो आप समझ रहे ना, ऐसा कोई है ही नहीं। आप तो ऐसे केवल ज्ञान में तो कोई आपके पास कमी है ही नहीं। कोई लोग कहते हैं कि मैं बंबई जा रहा हूं तो मैं वहां क्या चीज खरीद के लाऊं, बढ़िया चीज क्या मिलती है जिसमें फायदा हो, बोलो है? बताओ पंडित जी, कि ये बताओ तुम्हारे पास पैसा कितने है, फिर वही तुम्हारे पंडितों की आदत हम जो बात पूछते हैं उसका जवाब तो देते नहीं है? और हमसे एक प्रश्न और ठोक देते हैं, क्यों? कि नहीं भैया, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक हम नहीं बता सकते कि क्या खरीदो बंबई में। यदि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसा है तो चाहे जो कुछ कूड़ा करकट बिल्कुल नकली से रद्दी जमीन पहाड़ियों के भीतर कहीं भी दूर खरीद लेना, दो चार साल में चौगुने हो जाएंगे। क्यों है कि नहीं? हर चीज कितनी बड़ी, रद्दी से रद्दी चीज कितनी बढ़िया है। अब हम क्या क्या बताएं तुम्हें, क्या खरीदो क्या नहीं खरीदो, क्यों? वहां वहां एक जमीन मिल रही है इस भाव में, कोई कोने में खरीद लो, बस आंख नीच के, तुम्हारे पास पैसा है ना, बस फिर भूल जाना चार साल को, चार साल बाद जाना चौगने हो जाएंगे, बात पक्की है ना। लेकिन लेकिन तो बताओ कितने पैसा है, कि 2000 रुपया। ऐसा करो बेटा, जाने के पहले वापसी का टिकट खरीद लो बेहतर, वही फंस के रह जाओगे। क्यों? तो ये केवल ज्ञान को तो ये समस्या नहीं है, सारा लोकालोक को जाने, स्व को जाने, पर को जाने एक साथ, क्यों? पर के जानने के काल में स्व के जानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये समस्या छह ज्ञान वालों की है, तो उनको हम कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक तुम अपने आत्मा को जानो, पर को मत जानो। चुनाव की समस्या तो इन्हें है ना, क्यों? जिनके पास बहुत लिमिटेड है उनसे कहते हैं कि जाने का टिकट खरीद लो, मोक्ष में जाने का टिकट खरीद लो, सात तत्व को जानो, प्रयोजन भूत तत्वों को, और बाकी को मत जानो। सफर का हम भेद ही क्यों डालते हैं, क्यों? सात तत्व में सफर आ गए कि नहीं आ गए, क्यों? प्रयोजन भूत तत्व है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये जानना कि नहीं जानना? तत्वार्थ सिद्धांत सम्मा दशम में है कि नहीं है? बहुत प्रश्न किए मोटोर रमन जी ने मोक्ष महा प्रकाशक में, एक इंद्रिय कैसे जानेंगे, पशु पक्षी कैसे जानेंगे, इतनी शर्त कैसी हो सकती है, कि वो उतना जान लेंगे, तुम चिंता मत करो, ये हे है, ये उपाधि है, ऐसा ज्ञान उनको होता है। एक जो कबूतर होता है ना, कबूतर चिड़िया, उस चिड़िया को भी इतना ज्ञान है कि नहीं, ये कंकड़ खाने लायक नहीं है, वो ये अनाज का दाना खाने लायक है, वो दोनों बिल्कुल एक से दिखते हैं। आप जानते हैं ना कि आजकल बाजार में नकली फल आते हैं जो अपने टेबल पर सजाने की, वे असली से भी बढ़िया दिखते हैं, टेबल पर लगे रहते हैं ना, تو اصلی چنے بھی اور نقلی چنے بھی بڑھیا ایسے بنے بنایا ہے, تو ابھی وہ چڑیا اصلی چنے کو کھائے گی اس کو نہیں کھائے گی. اتنا بھید وگیان وہ کر لیتی ہے نا. تو سات تتو کا بھید وگیان ہے, اپادے آسرب ہے اپادے سب جان لے, گھبرانا نہیں. موکش مارگ پرکاشن میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ وہ شبد نہ جانے, بھاسا نہ جانے. بیٹا ماں شبد نہیں جانتا ہے لیکن ماں کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ دودھ شبد نہیں جانتا ہے لیکن یہ دودھ پینے لائق ہے یہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے گھبراؤ, اتنی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. وہاں کہتے ہیں پروجن بھوت کو جانو, یہ سب اپدیش کی بھاشا میں ہے. ستیہ تو یہ بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہے, ستیہ نہیں ہے یہ؟ یہ گہری بات نہیں ہے, بہت استھول بات ہے. یہ راجکوٹ والوں کو گہری ہوگی, ہمارے لیے تو بہت استھول ہے. کیوں کیوں ہے استھول؟ بولو. یہ گہری بات ہے. گہری. ارے بھائی, سیوپسم گیان کی پریائے میں اس کا گے کون پدارتھ بنے گا؟ یہ انت کال پہلے سے نکی ہے, سوکشم تو یہ ہے. کیوں؟ تو تیرے ہاتھ میں کہاں رہا چننا؟ تو پر کو مت جان, سوا کو جان. یہ کوری اپدیش کی بات رہ گئی نا, ہے کہاں؟ کیوں؟ یہ انت کال پہلے نکی نہیں تھا کہ آج میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا اور ابھی آپ کے گیان کی گے یہ بات بنے گی. کیوں بابو بھائی؟ سوکشم تو یہ ہے. آگم کا پرمان دوں؟ آگم کا پرمان دوں؟ موکش مارگ پرکاشک پڑھو, اس میں لکھا ہے کہ سوکشم کرنانی یوگ ہے, ادھیاتم استھول ہے, کرنانی یوگ سوکشم ہے. جسے تم استھول مان کے بیٹھے ہو نا, آلو میں انت جیو ہیں جو استھول ہے تمہارے لیے. کہیں وہ کہتے ہیں یہ سوکشم ہے. کیوں؟ کہ تم دیکھ نہیں سکتے, تمہارے گیان میں نہیں پکڑ میں آتا. اسی کا نام تو سوکشم ہے. تو کیولی کے کہنے سے ماننا پڑیں گے. کرنا یوگ کی باتیں تمہارے گیان کے پکڑ میں نہیں آتی ہیں تو کیولی کی ماننی پڑیں گی. اور ادھیات میں استھول ہے کیونکہ تمہارے گیان کی پکڑ میں آتا ہے نا. راگ دیش تمہارے گیان کے گئے بنتے کہ نہیں؟ وہ گیان ورن آدی کرم وہ تمہارے گیان کے گئے نہیں بنتے, وہ سوکشم ہیں. بھاو کرم استھول ہیں اور درب کرم سوکشم ہے. پڑھ لو. اس ترک سے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آگم سے سمجھ میں آیا کہ نہیں کیا استھول ہے اور کیا سوکشم ہے؟ ہمیں یہی پتا نہیں ہے کہ استھول کیا ہے اور سوکشم کیا ہے. جو سیدھا ہم جان سکتے ہیں وہ استھول ہے, اور جسے کیولی کی ضرورت پڑے وہ سوکشم ہے. لوک میں بھی جو بنا گرو کے سمجھ میں آ جائے وہ سرل ہے, یہ گرو جی کی ضرورت پڑے وہ تھوڑا کٹن ہے. ایسا نیم ہے کہ نہیں؟ یہ بولیے. جو سمجھنے کے لیے گرو جی کی ضرورت پڑے ہیں, اور جسے گرو جی کے گرو جی بھی کیولی کی ضرورت پڑے وہ مہا کٹھن ہے. دیکھو, آتما کی بات جاننے کے لیے آتم سدھان سمنا درشن ضروری ہے, اور کرنا یوگ کی بات نہیں جاننے کے لیے کیول سدھانم کیول گیانی سدھانم یہ ضروری ہے. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ کیولی گرودیو نے ابھی کہا تھا نا, کب کہا تھا بولو؟ ارے آدھا گھنٹے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ کیولی پر سدھا کر رہا ہے. یہ آلو میں انت جیو ہیں, یہ تیری سمجھ میں تب آئے گا جب تجھے کیولی بھگوان سویکار ہوں گے. تو کتنی کٹھن بات ہے. کیولی بھگوان کی سروگتا سویکار کرنا کتنا کٹھن ہے. نہیں تو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کہے گا دکھاؤ, ہم سوکشم انت لاتے ہیں, ہم یہ لاتے ہیں. یہ سارے ڈاکٹر ہمارا ماسا کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دہی میں تو جیو ہی جیو ہیں, ہم آپ کو بھلانے انت سے دکھا سکتے ہیں. کیوں کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور آلو میں تو ہمیں ایک ہی جیو نہیں دکھتا. لڑو ان سے جا کے. تم کیوں بابو بھائی؟ بولے سروگ کو نہیں مانے جب تک, تب تک کسی گلے آپ یہ اتار سکتے ہو کہ آلو میں انت جیو ہیں اور دہی میں نہیں ہے؟ گھبرانا نہیں, پوری بات سننا میری. میں نے سدھ کیا تھا امریکہ میں ڈاکٹر چندو بھائی کے گھر, چندو بھائی کے لڑکے کے گھر میں ویاخان ہوئے, 75 ڈاکٹر تھے اور وہاں پہ یہی پہ بحث چلی. میں نے کہا کہ ہمارے شاستر میں لکھا ہے سبق کی وانی میں کہ گائے کے استن سے دودھ نکلے, انتر مہورت میں اسے گرم کرو, गर्म करके उसे विधिवत जो है जमाओ तो 24 घंटे तक उसमें जीव पैदा नहीं होंगे और 24 घंटे के बाद में गारंटी से पैदा हो जाएंगे। गर्म नहीं करोगे तो अंतर्भूत में पैदा हो जाएंगे, इसलिए मानो तो वहां तक उसमें बिल्कुल उस दही में वो जम गया लेकिन जीव नहीं है और 24 घंटे बाद जीव हो जाएंगे। अब तुम ये सर्वज्ञ को मानो तो समझ में आएगा और ऊंट छूत भी यंत्र से देखने से समझ में आएगी ये बात। तो बहुत बढ़िया बात रामजी भाई ने इसका जवाब दिया था। क्या दिया था मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि वो फर्मेंटेशन होता है ना, तो किन से होता है? जीवाणुओं से होता है। अरे वो जीव का जो शरीर है वो अजीव रह जाए तो भी फर्मेंटेशन कर सकता है, क्योंकि परमाणु फर्मेंटेशन तो परमाणु करते हैं, जीव थोड़ी करते हैं। आप नहीं समझना है देखो, फिर और मैं बताता हूँ, थोड़ी बारीक बात है। ये एक गाय का गोबर होता है ना, उसमें एक कीड़ा होता है, उससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है। मुझे तो इतनी भयंकर है कि वो कीड़ा मेरे इधर कहीं से छू जाए तो गया काम से, बस खत्म, कल का प्रवचन नहीं होगा। अब वो कीड़ा गोबर तो मैं कभी छू ही नहीं, वो गाय ग्रस्ते में गोबर करती है और गोबर वो मिट्टी में मिल जाता है और वो मर जाता है कीड़ा, और उसका जो शरीर के अंश उस धूल में रहते हैं और वो धूल उड़ के यहां आती है उसमें मेरी हालत खराब हो जाती है। फर्मेंटेशन करता ना, क्योंकि असली फर्मेंटेशन तो पुद्गल ही करते हैं, जीव नहीं करता है। तो तब तक वे पुद्गल जीव नहीं है और वो फर्मेंटेशन करते हैं और जब मर्यादा के बाहर होते हैं अपने यहां चलित रस बोलते हैं उसे, वो कहते दही खट्टा हो गया, दही का स्वभाव खट्टा नहीं है इसलिए वो चल, जब रस चल गया तब खट्टा है। तो तब तक वो पवित्र हैं, बिल्कुल अहिंसक हैं। अब मुनिराज भी उसको अपने हाल ले सकते हैं सर्वज्ञ की वाणी को मानो तो बोलो सूक्ष्म क्या हुआ, बोलो सूक्ष्म ये हुआ कि सर्वज्ञ को माने बिना आलू के अनंत जीव मानना संभव नहीं है और भगवान आत्मा में राग देश, आत्मा तो नहीं राग देश दिखाई दे सकते हैं। सर्वज्ञ का तुम श्रद्धा नहीं करो तो अभी गुस्सा आता तो गुस्से के भाव का तुम अनुभव कर सकते हो, इसलिए भाई समय सार बहुत सरल है। मन में समय सार आएगा। हेलो।